पूर्व पाठ में मीमांसक और वैयाकरण के बीच संवाद चल रहा था, तो लास्ट में ये बात आई थी कि मीमांसक क्या करते हैं कि तिंगंत स्थल में, तिंग का अर्थ मानते हैं फल और व्यापार, और कृदंत स्थल में कृत प्रत्यय का अर्थ मानते हैं कर्ता और कर्म, जबकि ये उचित नहीं है। तिंगंत के लिए सूत्र है पाणिनि का, लह कर्मणि च भावे चाकर्म के भ्य, और कृदंत के लिए पाणिनि का सूत्र है कर्तरीकृत। ये दोनों जो हैं वो एक टाइप के हैं, एक प्रकार के हैं, तो आपको जो मानना है एक तरह से ही मान सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तिंगंत में आप प्रत्यय का अर्थ कुछ मानेंगे और कृदंत में प्रत्यय का अर्थ कुछ मानेंगे, और आप जबकि मीमांसक लोग यही करते हैं। तो वही वैयाकरण का कहना है कि कर्तरकृत और लह कर्मन च भावे चाकर्म के भ्य जो है तुल्य योग क्षेम वाले हैं, माने उसमें एक ही प्रकार है, एक ही माने समानता है दोनों में। इसलिए आपको क्या करना चाहिए कि जैसे कृदंत में आप जैसे मानते हैं प्रत्यय का अर्थ कर्ता कर्म, उसी तरह से तिंगंत में भी आपको प्रतिंग प्रत्यय का अर्थ कर्ता कर्म मानना चाहिए। ये बात पिछले पाठ में आई थी, अब आगे फिर विचार करते हैं कि अपिच मीमांसकानां कृताम इव आख्यातानां अपि कर्तृवाचित्वम् अस्ति। वही जो मैंने अभी बताया था कि मीमांसक लोगों के लिए कृताम इव माने कृत प्रत्यय की तरह, जैसे कृदंत स्थल में मानते हैं वैसे ही आख्यातानां अपि, आख्यात माने तिंग होता है ना, कि तिंग प्रत्यय का भी जो है कर्तृवाचित्वम् अस्ति, माने तिंग प्रत्यय का भी जो है कर्ता अर्थ ही मानना चाहिए। जैसे कृदंत में मानते हैं वैसे तिंगंत में भी कर्तार्थ प्रत्यय का मानना चाहिए। तो कहा कि फिर जो है ना मीमांसक के मत में व्यापार अर्थ का लाभ कैसे होगा, भाव व्यापार भावना एक ही चीज ना, भावनाया है एवं आक्षेप है ना, कहा कि भावना जो है ना वो आक्षेप के द्वारा भावना अर्थ का लाभ हो जाएगा। कैसे, तो कहा कृदादिवत, कहा कि आप लोग कृदंत स्थल में कृत प्रत्यांत स्थल में व्यापार का आक्षेप के द्वारा लाभ करते हैं ना, तो ऐसे ही आप तिंगंत स्थल में भी जो है व्यापार का आक्षेप के द्वारा लाभ कर लीजिए, और शक्ति के द्वारा जो है कर्ता और कर्म अर्थ का ही लाभ करिए। ये वैयाकरणों ने मीमांसकों को कहा कि जैसे कृदंत स्थल में आक्षेप के द्वारा व्यापार अर्थ का आप लाभ करते हैं, शक्ति के द्वारा कर्ता कर्म अर्थ का लाभ करते हैं, ऐसे ही आप तिंगंत स्थल में भी शक्ति के द्वारा कर्ता कर्म अर्थ का लाभ करिए, और आक्षेप के द्वारा भावना अर्थ का लाभ करिए, व्यापार अर्थ का लाभ करिए, दोनों में अंतर मत करिए, दोनों में भेद मत करिए। इस पर मीमांसक कहते हैं कि ऐसा है कि यदि हम आक्षेप के द्वारा व्यापार अर्थ का लाभ करेंगे तो क्या होगा कि आक्षेप से जिस अर्थ का लाभ होता है उसकी प्रधानता नहीं होती है वाक्य में, तो शाब्द बोध जो होता है, या शाब्द बोध क्या है आगे मैं बताऊंगा, शाब्द ऐसे संक्षेप में समझ लीजिए कि शाब्द बोध मतलब शब्द से होने वाला बोध, शब्द से होने वाला ज्ञान। शब्द का मतलब यहाँ पर एक पद नहीं समझना है, शब्द का मतलब जो है ना वाक्य लेना है, तो वाक्य से होने वाला वाक्य को सुन करके जो बोध होता है उसको कहते हैं शाब्द बोध, और शाब्द बोध में व्यापार को ही प्रधान मानते हैं। व्याकरण भी शाब्द बोध में व्यापार को प्रधान मानते हैं, और मीमांसक भी जो है शाब्द बोध में व्यापार को प्रधान मानते हैं। तो मीमांसकों का कहना ये है, मीमांसक कहते हैं व्याकरण को कि आपकी बात अगर हम मान लें, माने व्यापार को हम आक्षेप के द्वारा लाभ कर लें, तो क्या होगा कि शाब्द बोध में जो व्यापार की प्रधानता होती है वो नहीं हो पाएगी। वही का तथा सति माने आक्षेप करने पर प्राधान्यम तस्या न स्यात्, तस्या माने भावनाया, भावना की प्रधानता नहीं हो पाएगी। ताकि इति चेन न, कहा कि ऐसी बात नहीं है कि आक्षेप से जिसका लाभ होता है उसका प्राधान्य नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। उदाहरण दिया इन्होंने घटम आनय इत्यादौ, कहा कि घटम आनय माने घड़ा लाओ, यहाँ पर क्या है घट शब्द है, तो घट शब्द का अर्थ जो है ना जाति माना जाता है। जैसे घट का अर्थ क्या है, तो घटत्व जाति, तो घटत्व जाति अर्थ होता है। अब बताइए कि घटत्व जाति को कोई ला सकता है क्या? नहीं ला सकता है ना, तो किसको लाएगा? घट व्यक्ति को लाएगा, माने एक घड़ा लाएगा, दो घड़ा लाएगा, पांच घड़ा लाएगा, दस घड़ा लाएगा, संसार भर के जो लाखों करोड़ों घर हैं सबको ला सकता है क्या? नहीं ला सकता। तो जाति जो है ना, यहाँ पर मीमांसक लोग क्या होता है करते हैं कि शब्द का अर्थ जाति मानते हैं और व्यक्ति अर्थ का आक्षेप करते हैं। तो वही इन्होंने कहा व्याकरणों ने कि जैसे आप घटम आनीय में जाति अर्थ मानते हैं घट शब्द का, माने घटत्व जाति अर्थ मानते हैं और आक्षेप से व्यक्ति का लाभ करते हैं, फिर भी व्यक्ति का वहाँ प्राधान्य होता है। आप कहते हैं घटम आनीय, तो लाने वाला व्यक्ति क्या करता है? घट व्यक्ति को लाता है, माने एक घट, दो घट, चार घट को लाता है, घट जाति को तो नहीं लाता। तो जैसे वहाँ पर जाति अर्थ होने पर भी आक्षेप से जो लब्ध अर्थ है व्यक्ति, उसकी प्रधानता होती है, ऐसे ही यहाँ पर भी जो है अगर व्यापार का आक्षेप से लाभ करेंगे तो भी शब्दबोध में व्यापार की प्रधानता रह सकती है। वही कहा कि घटम आनीय इत्यादौ आक्षिप्त व्यक्ति अपि प्राधान्यवत उपपत्ति है। जैसे घटम आनीय में आक्षेप के द्वारा व्यक्ति अर्थ आता है और उसका प्राधान्य रहता है, उसकी प्रधानता रहती है, ऐसे ही व्यापार की प्रधानता रहेगी। फिर कहते हैं कि पचति इत्यादौ पाकम करोति इति भावनायाः विवरण दर्शनाद वाच्यत्वम्। कहा कि ये तो चलिए आपकी बात मैं मान लेता हूँ कि आक्षेप करने पर भी प्रधानता रह सकती है, लेकिन एक कष्ट है। क्या कष्ट है? कहा कि पचति का विवरण जो होता है, माने अर्थ जो बताया जाता है, वो है पाकम करोति, माने पाकम पाक क्रियाम करोति, पाक क्रिया को करता। अब यहाँ पर जो है इस विवरण में भावनायाह दर्शनार्थ, इसमें तो व्यापार को बताया गया ना, किम करोति, तो पाकम करोति माने व्यापार को करता। तो पचति का अर्थ जो पाकम करोति कर रहा है, यह व्यापार अर्थ का विवरण जो हो रहा है, इस विवरण के आधार पर जो है व्यापार अर्थ जो है वह तिंग का ही सिद्ध होता है, धातु का सिद्ध नहीं होता। कहा कि इति चेन न, कहा कि नहीं, ये तर्क आपका सही नहीं है कि विवरण के आधार पर जो है यह तिंग का अर्थ व्यापार होता है। कहा कि क्या, तो पाकानुकूल व्यापार बतः कर्तु अपि विवरण विषयत्व अविशेषात्। कहा कि यह जो पचति का विवरण है पाकम करोति, इस विवरण से जैसे भावना अर्थ निकलता है वैसे ही कर्ता अर्थ भी निकलता है, क्योंकि करोति में जो ती प्रत्यय का प्रयोग हुआ है उससे कर्ता अर्थ जो है विवरण से निकल जाएगा। तो विवरण के आधार पर आप इसको जो है तिंग का अर्थ व्यापार नहीं मान सकते, क्योंकि विवरण में जैसे व्यापार अर्थ है उसी तरह से कर्ता अर्थ भी है। फिर आगे कहते न च कर्तुर विवरणम तात्पर्यार्थ विवरणम। कहा कि ऐसा है कि विवरण से जो कर्ता अर्थ निकल रहा है वह तात्पर्य अर्थ है, वह वाच्य अर्थ नहीं है, माने शक्ति के द्वारा कर्ता अर्थ का लाभ नहीं होता है विवरण से, बल्कि तात्पर्य के द्वारा होता है। ये तात्पर्य क्या है? तो वक्तु इच्छा तात्पर्यम, वक्ता की जो कहने की इच्छा होती है ना, उसी का नाम है तात्पर्य। तो कहा कि ये तात्पर्य वाला अर्थ है, ये शक्ति वाला अर्थ नहीं है। पाकम करोति इति अशब्दार्थ कर्मत्व विवरणवत। कहा कि जैसे पाकम करोति में पाकम, इसमें कर्म अर्थ भी है, पाकम में द्वितीया है ना, तो कर्म अर्थ भी है, जबकि पचति इसमें कर्म अर्थ नहीं रहता, लेकिन विवरण में पाकम करोति में कर्म अर्थ भी दिखाई देता है। तो ये कौन सा अर्थ है? ये तात्पर्यार्थ है। तो तात्पर्यार्थ चूंकि कर्ता अर्थ है, इसीलिए हम उसको कर्ता को शक्ति के द्वारा तिंग का अर्थ नहीं मान सकते। इस पर और उदाहरण देते हैं, इतरेतर योग द्वंद्वे समुच्चयांश विवरण बधवा। कहा कि द्वंद्व समास में एक इतरेतर योग द्वंद्व समास होता है, जैसे हरिश्च हरश्च इति हरिहरौ। तो हरिश्च में जो च है और हरश्च में जो च है, ये जो दो चकार का जो विवरण किया गया है विग्रह में, यह भी जो है क्या होता है, तात्पर्यार्थ ही होता है, यह वाच्यार्थ नहीं होता। तो इसी तरह से कर्ता अर्थ जो है विवरण के द्वारा जो निकल रहा है यह तात्पर्य अर्थ है, और तात्पर्य अर्थ होने के कारण इसको हम तिनका अर्थ नहीं मान सकते। वही का न तत् अर्थ निर्णायकम, वह विवरण जो है यह अर्थ का निर्णायक नहीं होगा। तो कहते हैं कि भावनायाम अपि तुल्यत्वात्, कहा कि ठीक है भी जब तात्पर्यार्थ निर्णायक नहीं होता है, निर्णय नहीं करा पाता है, तो वो तो आपके लिए भी होगा ना, क्या मेरे लिए होगा, मुझे जैसे आप कह रहे हैं कि ये तात्पर्यार्थ है कर्ता अर्थ तो यह अर्थ नहीं माना जाएगा, ऐसे ही आपके लिए भी होगा ना कि व्यापार अर्थ जो है वहां पर विवरण में तात्पर्यार्थ है, उसके आधार पर आप तिनका अर्थ व्यापार नहीं मान सकते। तो इस तरह से जो मीमांसक ने कहा उसका जवाब व्याकरण ने दे करके खंडन कर दिया। अब फिर इसके बाद अगली बात आ रही है, फिर से जो है मीमांसक कोशिश कर रहे हैं, कह रहे किंच पचति देवदत्ता इत्यत्र अभेदान्वय दर्शना तदनुरोधे न कर्तृवाच्यत्वम आवश्यकम पक्ता देवदत्ता इतिवत्। यहाँ पर मीमांसक को व्याकरण समझा रहे हैं, व्याकरण का कहना है कि देखिए पचति देवदत्ता में, पचति में जो ती प्रत्यय है उसका अर्थ है कर्ता, और देवदत्ता जो है उसका भी अर्थ है कर्ता देवदत्त, तो दोनों में अभेद अन्वय माने अभेद अन्वय माने संबंध, अभेद संबंध है। ये अभेद क्या होता है जानते हैं कि नहीं, जिसमें भेद न हो है? जो एक ही प्रकार हो, जिसका समान हो, वह होता है अभेद। तो पचति का अर्थ, पचति में ती का अर्थ भी करता है और देवदत्त में देवदत्त का भी अर्थ करता है, दोनों में अभेद अन्वय। तो इत्यत्र अभेदान्वय दर्शनात्, पचति देवदत्ता में अभेदान्वय का दर्शन होता है, अभेद दर्शन माने ज्ञान होता है, तदनुरोधे न इसके अनुरोध से कर्तुः वाच्यत्वम आवश्यकम, ताकि जैसे देवदत्ता का कर्ता अर्थ मानना और पचति में ती का कर्ता अर्थ मानना ये आवश्यक है, क्योंकि दोनों का जब कर्ता अर्थ मानेंगे तभी समान होगा, और एक का अर्थ व्यापार मान लेंगे पचति में ती का, और देवदत्ता का अर्थ कर्ता मान लेंगे, तो दोनों में भेद हो जाएगा, अभेद नहीं होगा ना, जबकि अभेदान्वय यहाँ पर होता है, तो इस अभेदान्वय के आधार पर ती का अर्थ कर्ता मानना चाहिए। ताकि पक्ता देवदत्ता इतिवत्, अब देखिए तिंगंत पद है पचति और कृदंत पद है पक्ता, तो पक्ता देवदत्ता में मीमांसक लोग भी जो है ना कृत प्रत्यय का अर्थ कर्ता मानते हैं, ताकि जैसे आप लोग कृदंत में पक्ता देवदत्ता में ये कृत प्रत्यय का अर्थ कर्ता मानते हैं, ऐसे ही पचति देवदत्ता में भी तिंका अर्थ कर्ता मानना चाहिए, क्योंकि दोनों जगह अभेदान्वय होता है। पक्ता देवदत्ता में भी पक्ता में जो त्रिच प्रत्यय है कृत प्रत्यय है उसका अर्थ करता है, और देवदत्ता का अर्थ भी करता है, दोनों समान हो गया ना, सेम हो गया, तो अभेदान्वय होता है। ऐसे पचति देवदत्ता में भी ती का अर्थ करता मानिए, देवदत्ता का अर्थ करता मानिए, तो समान होगा, अगर आप व्यापार अर्थ मान लेंगे तो फिर अभेदान्वय नहीं होगा। तो अभेदान्वय के आधार पर जो है आपको तिंका अर्थ कर्ता मानना चाहिए, ये व्याकरणों ने उनको सजेस्ट किया मीमांसकों को। अब मीमांसक उस पर फिर आपत्ति देते हैं, कहते हैं कि न च अभेद बोधे समान विभक्ति कत्वम नियामकम, ताकि ऐसा है कि अभेदान्वय बोध में क्या होता है कि समान विभक्ति कत्व होना चाहिए, जब समान विभक्ति होती है ना तो अभेदान्वय बोध होता है, अगर असमान विभक्ति हो तो अभेदान्वय बोध नहीं होता है। तो कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, अच्छा तच्च अत्र नास्ति, और वो बात यहाँ नहीं माने यहाँ पर समान विभक्ति नहीं हुई ना, क्योंकि पचति में तिंग विभक्ति है और देवदत्त में सु विभक्ति है, ऐसे ही पक्ता देवदत्त में, पक्ता में त्रिच विभक्ति त्रिच प्रत्यय है और देवदत्त में सु विभक्ति है, इस तरह से समान विभक्ति नहीं होने से, नहीं पक्ता देवदत्ता में तो विभक्ति समान है, क्योंकि पक्ता में भी सुविभक्ति है देवदत्ता में भी सुविभक्ति, ये बात हो रही है पचति देवदत्ता के लिए, पचति में तिंग विभक्ति है और देवदत्ता में सुविभक्ति है, तो समान विभक्ति यहाँ नहीं है, और समान विभक्ति नहीं है तो अभेदान्वय बोध नहीं होगा, ऐसा मीमांसक कह रहे हैं। न च अभेद बोधे समान विभक्तिकत्व नियामकम तच्च अत्र नास्ति, ताकि समान विभक्तिकत्व होना चाहिए अभेद बोध के लिए, वह पचति देवदत्ता में नहीं है। तो व्याकरण कहते हैं कि न न च इति वाच्यम, ये न च को वाच्यम में लगाना है, न वाच्यम ऐसा आप नहीं कह सकते कि समान विभक्ति कत्व जहाँ रहता है वहीं पर जो है अभेदान्वय बोध होता है। क्योंकि देखिए सोमेन यजेता, यहाँ पर समान विभक्ति नहीं है, सोमेन में तृतीया विभक्ति है और यजेत में तो विभक्ति है। स्तोकम पचति, यहाँ स्तोकम में अम द्वितीया विभक्ति है, पचति में ती प्रथमा प्रथम पुरुष का एक वचन है। राज पुरुषा में जो है राज्ञा पुरुषा, एक में षष्ठी है एक में प्रथमा है, तो यहाँ पर असमान विभक्ति है, फिर भी जो है अभेदान्वय बोध होता ही होता है। तो इसलिए आप ये कह करके नहीं भाग सकते कि पचति देवदत्ता में समान विभक्ति नहीं है इसलिए अभेदान्वय बोध नहीं होगा, क्योंकि अभेदान्वय बोध दोनों टाइप्स की जगह पर होता है, समान विभक्ति हो तो भी और असमान विभक्ति हो तो भी। तो इस प्रकार जैसे पक्ता देवदत्ता में अभेदान्वय बोध होता है, ऐसे ही पचति देवता दत्ता में भी अभेदान्वय बोध होगा, और अभेदान्वय बोध के आधार पर आपको तीन का अर्थ जो है कर्ता मानना चाहिए। ये सजेस्ट किया वैयाकरणों ने मीमांसकों को। फिर इसके बाद और जो है शास्त्रार्थ की कड़ी आगे बढ़ती है, जिसको जो है अगले पाठ में हम लोग पढ़ेंगे। आज यहीं पर पाठ को संपन्न करते हैं।